स्कंध है छठा अध्याय है नौ और श्लोक संख्या है 55। तस्मिन् विनिहते यूयम् तेजोस्त्राधयुध संपदः भूय प्रापश्चथ भद्रम्बो हिंसन्ति च मत्परान्। तस्मिन् विनिहते यूयम् तेजोस्त्राधयुध संपदः भूय प्रापश्चथ भद्रम्बो हिंसन्ति च मत्परान्। तस्मिन् विनिहते यूयम् तेजोस्त्राद्युत संपदः भूय प्रापस्थ भद्रम्बो हिंसन्ति च मत्परान्। शब्दार्थ तस्मिन् जब वह वृत्रासुर विनिहते मारा जाता है, यूयम तुम सभी तेजह तेज अस्त्र तीर आयुध अन्य हथियार संपदा तथा ऐश्वर्य भूयः फिर प्रापस्था प्राप्त करोगे भद्रम समस्त कल्याण वह तुमको ना नहीं हिंसन्ति पीड़ा पहुंचाएंगे च तथा मत्परान् मेरे भक्त। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद जब वृत्रासुर मेरे आत्मबल ब्रह्मतेज से मर जाएगा तो तुम्हें पुनः अपना तेज आयुध तथा संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, इस प्रकार तुम सबका कल्याण होगा। यद्यपि वृत्रासुर तीनों लोगों को विनष्ट कर सकता है किंतु तुम मत डरो कि वह तुम्हें हानि पहुंचाएगा। वह भी भक्त है और तुमसे कभी भी विद्वेष नहीं करेगा। मेरे पीछे एक बात हो रही है। जब वृत्रासुर मेरे आत्मबल ब्रह्म तेज से मर जाएगा तो तुम्हें पुनः अपना तेज आयुध तथा संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, इस प्रकार तुम सबका कल्याण होगा। यद्यपि वृत्रासुर तीनों लोगों को विनष्ट कर सकता है किंतु तुम मत डरो कि वह तुम्हें हानि पहुंचाएगा। वह भी भक्त है और तुमसे कभी भी विद्वेष नहीं करेगा। तात्पर्य भगवान का भक्त किसी से द्वेष नहीं रखता। भक्तों की तो दूसरी ही बात है। जैसा कि बाद में पता चला वृत्रासुर भी भक्त था, अतः उससे यह आशा नहीं की जाती कि वह देवताओं से द्वेष रखेगा। निसंदेह वह स्वतः देवताओं का हित करना चाहेगा। भक्त सत्कार्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। चाणक्य पंडित ने कहा है, सन्मिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। अंततः मनुष्य की सारी संपत्ति जहां तक कि शरीर भी नष्ट हो जाएगा। अतः यदि किसी सत्कार्य में इनका प्रयोग हो तो भक्त अपना शरीर भी देने से नहीं कतराता। क्योंकि भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करना चाहते थे, अतः वृत्रासुर जो तीनों लोकों को निगल सकता था देवताओं द्वारा मारे जाने के लिए उद्यत हो जाएगा। भक्त के लिए जीने तथा मरने में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जीने पर वह भगवान की भक्ति करता है और देह त्यागने के बाद वैकुंठ में भी वही सेवा करता है, उसकी भक्ति निर्बाध चलती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंध के अंतर्गत वृत्रासुर का आविर्भाव शीर्षक 9 अध्याय का भक्तिविधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जब वृत्रासुर मेरे आत्मबल से मर जाएगा तो युद्ध तो देवता करेंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे आत्मबल से, तो मेरी कृपा से मारा जाएगा एक्चुअली वो, तुम्हारे तुम्हारे बस की नहीं है वैसे उसे मारना, तो मेरी कृपा से मारा जाएगा। जैसे कि भगवान गीता में भी कहते हैं अर्जुन को 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में, मत प्रसादा तरिष्यति, कि मेरी कृपा से तुम्हारे सारे के सारे जो अवरोध हैं वो दूर हो जाएंगे, लेकिन मेरी चेतना में रहते हुए युद्ध लड़ो। जब तुम मेरी चेतना में रहते हुए युद्ध लड़ोगे, मेरा कहना मानोगे, तो मेरी कृपा से तुम्हारे सारे अवरोध दूर हो जाएंगे। और फिर लेकिन अगली लाइन में भगवान कहते हैं, लेकिन यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे और मिथ्या अहंकार के वश में आते हुए कार्य करोगे तो तुम विनष्ट हो जाओ। ये वैसे देखा जाए तो पूरी भगवद गीता की समरी यही है, 18वें अध्याय का 58वां श्लोक। तो यहां पर ही भगवान बता रहे हैं कि वृत्रासुर को मारना जो है तुम्हारे बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है, वो पूरे जो सृष्टि है उसको निकल सकता है, इससे तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन मेरी कृपा से तुम विजय प्राप्त कर पाओगे। तो वैसे तो वृत्रासुर, क्योंकि ये जो लीला है इसको देखने के कई तरीके हैं, एक तरीका यह है कि देवताओं के नजरिए से देखना, देवताओं के नजरिए से देखें उनके दृष्टिकोण से, तो वृत्रासुर जो है वो माया के समान है, माया को जीतना जो है असंभव है जीव के लिए। भगवान तो बता रहे हैं कि देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या, बहुत कठिन है, लेकिन प्रैक्टिकली जीव के लिए असंभव है ये, क्योंकि माया क्या है, माया तो 100% शरणागत है भगवान के, हम कितने प्रतिशत शरणागत हैं, 5%, 10%, 50%, 95%, 99%, कौन है 100% शरणागत। तो जो 1% भी रह जाएगा ना, उससे माया लीको के अंदर आ जाएगी, क्योंकि वो 100% शरणागत है, इसलिए कौन लड़ सकता है उससे, कोई नहीं लड़ सकता उससे। जैसे किसी घर में कोई जाए और उनके घर में डोबरमैन कुत्ता हो, तो वो जो है दौड़ता आए और जो है हम हाल ही यहां लिखा हो कुत्तों से सावधान, लेकिन फिर भी हम परवाह ना करें, हम घुस जाए अंदर, तो वो हमारे ऊपर झपटेगा, हमको चीर फाड़ने के लिए तैयार होगा, हमारे ऊपर फीस मनाएगा, संडे लव फीस। तो उस वक्त जो है हम डोरमैन कुत्ते से लड़ नहीं सकते कि हाँ चल हट कुत्ता कहीं का, यू कैन से दैट, ही विल हैव पार्टी। सिर्फ एक तरीका है कि हम मालिक को बुला रहे, तो मालिक भाई बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, तो मालिक आ जाएगा, ए टॉमी गेट डाउन, चलो छोड़ दो छोड़ो छोड़ो उसे, तो जो है वो टॉमी चला जाएगा, और यहां जो डोबरमैन जो डॉग है वो जो कि चीर फाड़ने के लिए तैयार है वो तो फैक्चुअली हमने अपने दम पे जो है कुत्ते से अपने आप को मुक्ति नहीं पाई, भगवान ये जो मालिक है ना कुत्ते का, उसने कह दिया डोबरमैन को, ए डोबरमैन नीचे आ जाए, चलो 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 छोड़ दो उन्हें। तो उस तरह से भगवान ही माया कहते हैं चलो छोड़ दो छोड़ो उसे छोड़ दो उसे, ये जीव शरणागत होने की कोशिश कर रहा है, इसको छोड़ दो। तो भगवान की कृपा से ही हम माया से मुक्ति पा सकते हैं, अन्यथा माया से कोई मुक्ति पा ही नहीं सकता, इज नो अदर वे। इसलिए हम देखते हैं जो गजेंद्र मोक्ष की जो कथा आती है, जिसमें कि गजेंद्र हाथी है, अब हाथी जो है मगरमच्छ से ज्यादा ताकतवर होता है, दोनों की अगर ताकत आंकी जाए तो हाथी और उनका अगर रेसलिंग मैच हो जाए तो ऑफकोर्स कौन जीतेगा, हाथी जीतेगा, क्या मगरमच्छ की क्या औकात है, पांव रखा नहीं है कि उसका तो पापड़ बन गया। लेकिन ये जो युद्ध हो रहा है ना, ये युद्ध हो रहा है पानी के अंदर, ये है ट्विस्ट इन द स्टोरी। तो उसी तरह से जो जीव है, जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, ये जो है श्रेष्ठतम शक्ति है, भगवान गीता में बता रहे हैं, लेकिन ये जो पानी यानी कि फॉरेन नेचर में आ गया ना जीव, यहां पर माया जीतेगी, यहां पर माया ही जीतेगी, भले ही जीव श्रेष्ठ शक्ति है, माया जो है इंफीरियर शक्ति है, लेकिन फिर भी यहां पर माया जीतेगी, क्योंकि ये उसकी जगह है, कहते ना यार हमारे इलाके में तेरे को देखूंगा, तो ये माया का इलाका है, तो यहां पर जीव जीत ही नहीं सकता, कितना युद्ध लड़ ले उसके साथ, कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम शास्त्रों को इस तरह से पढ़ेंगे उस तरह से पढ़ेंगे, खूब तपस्या करेंगे और फिर माया जो है छोड़ देगी हमें। हम सारे प्रयासों के बाद भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, उस कृपा से हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन वैसे माया के शिकंजे से कोई नहीं निकल सकता। तो भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम ये जो युद्ध लड़ने जा रहे हो ना, इस युद्ध को लड़ोगे, यदि तुम मेरी चेतना में लड़ोगे, माम अनुस्मरा युद्ध च, अगर ऐसा करोगे तुम तो सारे अवरोधों से मुक्त हो जाओगे, वरना तो तुम गए। अदरवाइज अगर कैलकुलेट किया जाए अर्जुन की पार्टी क्या है, दुर्योधन की पार्टी है, कुछ भी नहीं है, एक अकेले भीष्म पितामह, बाकी सारी दुर्योधन पार्टी जो है वो ऐश्ली पार्टी करने निकल जाए, सिर्फ भीष्म पितामह अकेले पूरी की पूरी पांडव सेना के लिए काफी, अकेले भीष्म पितामह, ही वाज सो पावरफुल। लेकिन क्योंकि कृष्ण भावना में रहते हुए अर्जुन और जो पांडव थे, जो उनकी जो पांडव सेना थी, क्योंकि उन्होंने युद्ध लड़ा इसलिए वो विजयी हुए। उसी तरह से माया के आगे कुछ नहीं है हम लोग, कुछ भी नहीं है। माया शक्ति जो है वो जीव का ज्ञान ढक सकती है, उसको अंधकार में फेंक सकती है, और जीव कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं कर सकता है इसमें। तो बहुत बहुत ताकतवर है वो। तो अब ये माया शक्ति, ऑफकोर्स एक बार नारद मुनि को ऐसा ख्याल आया, उन्होंने सोचा कि ये मतलब ये माया शक्ति क्या चीज है, दुनिया वाले पूरी दुनिया घूम रही है, क्या चीज क्या है। तो विष्णु पुराण में कथा आती है, तो एक बार भगवान के पास गए कि भगवान ये क्या माया शक्ति, क्या मतलब अलग ही अजब ही शक्ति आपकी है, पूरी दुनिया घूम रही है इसमें, मतलब मैं दर्शन करना चाहता हूँ ऐसी शक्ति क्या आपके, देखो तो क्या चीज क्या है, पूरी दुनिया घुमा रखी है इसने। भगवान ने कहा नारद अच्छे खासे खुश हो भाई, क्यों क्यों दर्शन करना चाहते हो माया के। तो नारद मुनि को बड़ी उत्कंठा हो रही थी, नहीं एक बार दर्शन हो जाए, एक बार देख लूं, मतलब देखो तो वो क्या चीज क्या होगी भाई, वो पूरी दुनिया को जिसने घुमा के रखा है। तो इतनी इज्जत कर रहे थे, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है तुमको माया के दर्शन करा देते हैं। तो भगवान ने कहा चलो चले फिर। तो नारद मुनि और भगवान दोनों साथ साथ निकल लिया दर्शन करने के लिए माया के। तो चलते रहे रेगिस्तान में चले जा रहे हैं। तो भगवान जो है थक गए, भगवान बैठ गए, नारद बहुत थक गया मैं चलते चलते, पानी ले आओगे जरा कहीं से, थोड़ी प्यास लगी है। हाँ हाँ भगवान अभी लेके आता हूँ। तो नारद मुनि गए तो ढूंढते ढांढते काफी दूर तक उन्हें देखा, कुछ नहीं मिल रहा था। तो बहुत दूर जो है एक कुआं उन्हें नजर आया, और कुएं के पास एक झोपड़ी थी। उन्होंने कहा हाँ यहाँ लगता है कोई व्यक्ति होगा जो कि पानी दे पाएगा भगवान के लिए। तो वहां पर गए तो उन्होंने कहा घर में कोई है, तो एक स्त्री जो है आई, बाहर आई, तो उन्होंने देखा वीणा है और इतने इतना तेज निकल रहा है। कहते क्या आप नारद मुनि है? हाँ मैं नारद हूं, मैं भगवान का भक्त, भगवान का दास नारद। आप यहां कैसे? वो आपके कुएं से थोड़ा पानी चाहिए था। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आप लीजिए ना, ये कुआं आपका है, लीजिए आप। तो गए नारद मुनि ने जो है पानी उसमें से लिया। कहते हैं आप आए हैं, संतों की सेवा करना तो हम गृहस्थों का धर्म है, तो आपको बिना सेवा किए तो हम जाने नहीं देंगे, आप कृपा करिए बस बैठिए, आप कुछ थोड़ा कुछ पाके जाइए, क्योंकि एक बार बस संतों की सेवा हो जाए, वो भी आपके जैसे नारद मुनि की सेवा हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है। तो नारद मुनि बैठ गए, तो उन्होंने जो है उन्होंने से पांव धोए, उनको जो है खाने के लिए कुछ वस्तुएं दी, भोजन दिया, तो और उनको पंखा करने लगी। ने कहा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आपके जैसे महापुरुष के मेरे को दर्शन प्राप्त हुए, मेरा जीवन सफल हो गया मेरा आज। यदि मुझे जीवन भर आपकी सेवा करने का मौका मिले ना, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में नहीं होगा। वास्तव में आप ही मेरे नाथ हैं और मैं आपकी दासी हूं। अगर मैं जीवन भर आपकी दासी बनकर आपकी सेवा कर सकूं बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारद मुनि ने कहा कि देखिए मैं जानती हूं वांछा कल्पतरुभ्यश्च, आप इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, आप वैष्णव हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भी एवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो नारद मुनि जो है उन्होंने कहा हाँ वांछा कल्पतरु तो होता है वाकई वैष्णव के बारे में। कहते हैं हाँ चलो ठीक है आपकी सेवा ले लेता हूं। तो उसके बाद जो है उनसे उन्होंने और सेवा ली, तो उन्होंने कहा कि नाथ यदि आप ही मेरे जीवन साथी हो तो और इसे उत्तम क्या हो सकता है। ठीक है आपकी इच्छा को पूरा करता हूँ। उसके बाद उनका विवाह हुआ, उनके बच्चे हुए, गृहस्थी बस गई और जो है वो रहने लगे अपने आराम से, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, पोते हो गए, पड़पोते हो गए, और नारद मुनि गृहस्थी जो है अच्छे से चल रही थी। अब चलती रही। तो अब एक दिन क्या हुआ, गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आई तो सब बह गया, सब बह लगा, और उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके सारा सामान सब इधर उधर बिखरने लगा। तो नारद मुनि उसको पकड़ रहे थे कि अरे ये मेरे बच्चे, ओ ये भी छूटा, ये भी छूटा, ये भी छूट रहा, ये भी छूट रहा, ओ ओ ओ ओ। लेकिन सब का सब उस बाढ़ में बहता चला गया, और नारद मुनि खुद भी उस बाढ़ में बह जा रहे हैं। बहते बहते जो है वो पेड़ के पास जाके फेंका उस बाढ़ के पानी ने उन्हें। तो नारद मुनि ने सर उठाया तो भगवान सामने खड़े थे। भगवान ने कहा नारद थोड़ी प्यास लगी है, पानी मिलेगा? तो नारद मुनि को ध्यान आया, कहते हैं भगवान یہ کیا مایا شکتی آؤ کی, ارے باپ ارے باپ میں کبھی اس کے درشن نہیں کروں گا. آف کورس اس کا مطلب یہ نہیں کہ استری ہی مایا ہوتی ہے, دا پوائنٹ از دیٹ کہ سنسار میں جو ہمارا سوامتو کا بھاو ہے, جو سوامتو کا بھاو ہے کسی بھی جیو کا, چاہے وہ استری کے شریر میں ہو یا پرش کے شریر میں, جو سوامتو کا بھاو ہے سنسار میں جو ہے ہم کو, جو آشائیں ہماری بندی ہوئی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس طرح سے اس طرح سے جوڑ توڑ کر کے ہم لوگ جو ہے ایسا خوش رہیں گے, یہ پلاننگ کریں گے, یہ یوجنائیں بنائیں گے, یہ ہی مایا ہے واسطہ میں کہ سنسار کو ہم بھوگ لیں اور پھر جو ہے ہم اس کے بعد جیون جو ہے ہمارا آنند پورن رہے گا, یہ ہی مایا ہے. وہ جو نہیں ہے اس کو مایا کہتے ہیں. تو نارد منی کو جب درشن ہوئے مایا کے تو وہ ایک دم انہوں نے کہا بھگوان بس آج آج کے بعد کبھی درشن نہیں کروں گا, کیونکہ مایا کا نا سوبھاؤ یہی ہے کہ نہ صرف وہ جیو کو باندھتی ہے, ایک تو جیو کو ہے جیو کو اس نے پکڑ لیا, دوسرا کیا ہے جیو کو انٹاکسیکیٹ کر دیتی ہے, یعنی کہ جیو کو اپنا نشہ کرا دیتی ہے. تو جی اگر کسی کو بولو بھی نا کہ دیکھو بھائی کتنا آپ دیکھو کتنا دکھی ہو سنسار میں, آ جاؤ بھگوان کے پاس, اے نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہے, چنوتیاں تو جیون میں آتی رہتی ہیں اتار چڑھاؤ, کیونکہ مایا کیا کرتی ہے اپنا نشہ کرا دیتی ہے جیو کو, تو جیو کو اچھا بھی لگتا ہے مایا کے ساتھ, تو جیو جو ہے مایا کے ساتھ کھیلتا ہے کودتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے, یہ جو رنگ برنگے کانچ کے ٹکڑے ہیں نا مایا کے, سوچتا ہے دیکھو کتنے اچھے ہیں کانچ کے ٹکڑے, نیلا ہے پیلا ہے, دیکھو کتنی ورائٹی ہے کتنا اچھا ہے, چلو اس کانچ کے ٹکڑے کے ساتھ میں کھیلتا ہوں. تو کانچ کے ٹکڑے کے ساتھ جب بچہ کھیلتا ہے نا تو اس کو جو ہے کھروچیں آتی ہیں, خون نکلتا ہے اس کا, لیکن کیونکہ ان کانچ کے رنگ برنگے ٹکڑوں سے وہ اتنا زیادہ آکرشت ہے اس لیے کبھی بھی اس کو چھوڑ نہیں پاتا. تو اسی پرکار سے مایا جو ہے وہ اس پرکار سے جیو کو گھیرتی ہے, اس کے گیان کو ڈھکتی ہے کہ اس کا نکل پانا بڑا بڑا کٹھن ہوتا ہے, بہت زیادہ کٹھن ہوتا ہے. اور وشیش روپ سے الگ دوسرے لوگوں میں جہاں پر دکھ کم ہے اور بھوتک سکھ زیادہ ہے, وہاں پر تو مایا اور اچھے سے گھیر کے بیٹھی ہے. اس لیے اگر آپ جیسے کہ برہما ویبر پران جیسے اگر شاستر پڑھیں گے نا, اس میں دیکھیں گے کہ دیوی دیوتاؤں میں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اندری بھوگ میں لگنا ان کے لیے کتنا آسان ہے, ہمیشہ گرنا اندری بھوگ میں بہت آسان ہے ان کے لیے, یہاں تو پھر بھی کشٹ ملتے ہیں تو پھر تھوڑی عقل آتی رہتی بیچ میں. یہ بات اور ہے مایا اس کو بھی بھلا دے گی, آپ کو صرف اچھے ایکسپیرینس یاد کرائے گی, بوڑھے ایکسپیرینس بھلا دے گی. تو اس طرح سے جو ہے مایا جیو کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے. تو یہ جو مایا ہے, تو جیسے یہاں بتا رہے کہ اب یہ وتراسر جو ہے وہ ایشا نہیں کرتے, تو اس لیے وہ جو ہے وہ سیوا کر رہے ہیں ایک طرح سے لیلا میں. اس طرح سے مایا بھی جو ہے وہ جیو سے ایرشا نہیں کرتی ہے وہ کہ اس کو روک کے رکھوں گی. تو ویسے جو ہے یہ اس کا جو درگ جو اس نے بنایا ہے بھوتک سنسار کا, اس کو پار کرنا جو ہے بہت بہت مشکل ہے. مشکل کیا, اسمبھو ہے. اگر ویسے کوئی آرڈنری جیل ہو جس میں کوئی قیدی ہے, اگر چھوٹ کے بھاگ جاتا ہے نا تو جیلر کو غصہ آتا ہے کہ میری جیل سے کیسے بھاگ گیا, وہ ہائی سیکورٹی جیل ہے میری, کیسے بھاگ گیا. لیکن مایا کی اس درگ سے جس میں کی سیکیورٹی اگر آپ دیکھیں نا, ویسے تو دیکھو کوئی والس نہیں ہے, کوئی ایسی سلاخیں نہیں ہیں, لیکن یہ جو سنسار کی جو آسکتی ہے اسی کے سلاخوں سے ہم لوگ بندھے ہوئے ہیں. تو ان سلاخوں کو پار کر کے, اس بہت ہی جگت کی جو درگ ہے اس کو پار کر کے واپس جب کوئی بھگوان کے دھام جاتا ہے نا, تو مایا جو کہ سنسار کی جیلر ہے اس کو دکھ نہیں ہوتا, اس کو خوشی ہوتی ہے, کہتی ہے بھگوان اس کے سامنے میں نے کتنے اوروڈ ڈالے لیکن یہ اتنا سمرپت تھا اس لیے یہ میرے سارے اوروت پار کر گیا. ایسے ایک بار شیلا پربھوپا جو اپنے ساتھ ان کے برہمانند سوامی ان کے ساتھ جا رہے تھے, تو بیچ پہ تھے تو جا رہے تھے, تو ماں پربھوپا جی نے کہا وہ جو کیکڑا ہے نا اس کو پکڑ کے لے کے آؤ. تو برہمانند سوامی ہی واز ہیوج, بہت بہت وشال تھے وہ, لمبے چوڑے تھے. تو جا کے نا وہ اس کو پکڑنا چاہیں تو وہ جو کیکڑا تھا وہ کیا کرتا, یہاں سے چھلانگ مار کے سمندر کی اور بھاگتا تھا. وہ پھر سے انہوں نے کوشش کی, پھر سے کیکڑا ایسے چھلانگ مارتا سمندر کی اور بھاگتا تھا. تو پربھوپا جی نے کہا تم چھوڑ دو, تمہاری پکڑ میں نہیں آئے گا, کیونکہ اس نے نا سمندر کی شرن لی ہوئی ہے, اس لیے وہ تمہارے جو اوروھ ہیں ان کو پار کر جائے گا. وہ اس طرح سے جب ہم کرشن کی شرن میں جاتے ہیں تو یہ جو مایا جو اوروھ ڈالتی ہے نا ہم اس کو پار کر پاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کرشن کی کرپا سے ہی سمبھو ہے, پریاس کے دوارا ہم جو ہے کرپا کو آکرشت کرتے ہیں, جیسے کہ ہم جب بھی کرتے ہیں, جب کے وقت ہم سب پریاس کرتے ہیں سنگھرش کرتے ہیں, لیکن اس سنگھرش کے دوارا جو نام پربھو جو ہری نام پربھو ہیں اپنی کرپا کرتے ہیں نا, اس کرپا سے ہم واسطہ میں اپنے انرتھوں سے نکلتے ہیں. Not that कि मैं अपने जो जॉ एक्सरसाइज कर रहा हूं ऐसे मैं अनर्थ निकलने वाला हूं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, मेरी जॉ एक्सरसाइज मेरे को अनर्थों से नहीं निकाल सकती। लेकिन इस सिंसेरिटी के साथ जब मैं प्रयास करता हूं तो नाम प्रभु देखते हैं, ओ बड़ा प्रयास कर रहा है, चलो इसको कृपा देते हैं। तो नाम प्रभु अब जो कृपा देते हैं ना, उस कृपा से वास्तव में हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हमारी उंगली फेरने से और हमारे जॉ हिलाने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये कृपा है जो वो तब मिलती है जब सिंसेरिटी होती है। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो ईर्ष्यालु नहीं है। और श्री प्रभुपाद ने कहा कि भक्त जो होता है वो किसी भी प्रकार का जो कष्ट है वो सहने के लिए तैयार होता है। क्यों? क्योंकि वो सारे कार्य करता है कृष्ण के लिए। जैसे गिरिराज महाराज थे, जब वो जुहू टेम्पल का जब बात चल रही थी, जुहू टेम्पल में मिस्टर नायर जो है कई प्रकार के अड़चने डाल रहे थे कि ये इस्कॉन वालों को जुहू में जमीन नहीं मिलनी चाहिए, इनको यहां मंदिर नहीं बनाने देंगे, और हम लोग प्रयास कर रहे थे कि वहां हमको जमीन मिल जाए और उस पर आधिपत्य हो जाए और फिर हमारा मंदिर बन जाए वहां पर। तो ये काफी संघर्ष चल रहा था। तो गिरिराज महाराज सारी लीगल जो फॉर्मेलिटीज थी एग्जीक्यूशन लेवल पे देखते थे उस वक्त। तो मिस्टर नायर को ये पता था कि ये जो लड़का है ना गिरिराज, उस वक्त ब्रह्मचारी थे वो, ये लड़का जो गिरिराज है ना ये बहुत ही खास रोल प्ले करने वाला है सारे जो जो लीगल जो फॉर्मेलिटीज हैं। अगर इसको किसी तरह से गिरा दिया जाए, इसको डिबेट करा दिया जाए, इसका नाम खराब कर दिया जाए तो क्या है, मैं कह दूंगा देखो देखो ये लोग केस लड़ने आए, इनका चरित्र देखो, ये तो चरित्र है इन लोगों का, तो इसका नाम बदनाम हो जाएगा। तो इसलिए मिस्टर नाय ने एक प्रोस्टिट्यूट हायर की थी, एक वैश्या हायर की, कि वो जाके ये गिरिराज जो कि गिरिराज उस वक्त गिरिराज प्रभु थे उनको जो है वो ब्रह्मचर्य से गिरा दें और फिर जो है नाम खराब हो जाएगा तो जुहू की जमीन नहीं मिलेगी। तो जब भी वो कोर्ट जाते थे ना गिरिराज महाराज, तो ये उनके बगल में सट के बैठ जाती थी उनके साथ, उनसे चिपक के बैठेगी, कभी उन्हें कंधा मारेगी, कभी उन्हें टांग मारेगी, तो उन्होंने जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी गिरिराज महाराज को। तो गिरिराज महाराज ने सोचा कि मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी कृपा मेरे को दी है, इतना स्नेह मेरे को दिया है, इतना प्यार दिया है, मैं कहां मैं सड़ रहा था संसार में, मेरे को ये मुझको जो है भगवान की भक्ति दी है, मैं इस प्रोटीन के बैग जो प्रोटीन का थैला है इसको भोगने के लिए अपने गुरु से दगा करूंगा, मैं उनको छोड़ूंगा कभी नहीं। तो दो तीन बार उसने भी अटेम्प्ट किए लेकिन गिरिराज महाराज ने एकदम उसको नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो उसने जाकर मिस्टर नायर को बताया, तो मिस्टर नायर ने दोबारा अटेम्प्ट नहीं किया। तो क्योंकि भक्त जो होते हैं वास्तव में भगवान की जो कृपा है उसको एक्नॉलेज करते हैं और उसको पूरी तरह से निर्भर होते हैं तो बच पाते हैं, अन्यथा वो नहीं बच सकते। श्री प्रभुपाद का 72nd जो बर्थडे था वो मनाया जा रहा था, तो उस वक्त व्यास पूजा के बारे में इतना सब जानते नहीं थे, व्यास पूजा का कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो शाम को प्रोग्राम था और मॉर्निंग में उनकी एक डिसाइपल थी गोविंद देवीदास जी, तो उन्होंने जो है उन्होंने क्या किया, उनको पता नहीं था कैसे व्यास पूजा मनाते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो बर्थडे मनाया जाता है, व्यास पूजा इज बर्थडे एक्चुअली अगर सिंपल वर्ड में बोले तो वहां तो केक के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। तो उन्होंने 3 मंजिला केक बनाया उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए, श्रील प्रभुपाद जी का जो आविर्भाव दिवस है केक। तो उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद आज सुबह जो है हमने बहुत ही विशेष व्यवस्था की है आपके बर्थडे के लिए, आपके जन्मदिन के लिए। प्रभुपाद ने कहा अच्छा ठीक है। तो उनके सामने जो है वो केक लेके आई, अब वो प्रभुपाद जी का 72nd बर्थडे था पर उन्होंने 72 कैंडल नहीं लगाई, उसमें 12 कैंडल लगाई उसमें बर्थडे के केक पे, और फिर उनको जलाया और जला के बोला श्रील प्रभुपाद इस तरह से हम लोग अमेरिका में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और अब अपना आंख बंद करके फूंक मारिए और इन सारी जो जितनी भी मोमबत्तियां हैं इनको बुझा दीजिए ये सारी मोमबत्तियां इनको बुझा दीजिए, और आप आंखें बंद करके ना कोई भी ना आप इच्छा मांगना जो कि आपको चाहिए जीवन में। हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग फूंक मारते हैं और आंख बंद करके इच्छा मांगते हैं और देखते हैं कि सारी मोमबत्तियां बुझ गई हैं तो हमारी इच्छा पूरी होती है। तो आप ही कोई ऐसी इच्छा हो जो कभी पूरी ना हुई हो तो आप जो है इन केस की वजह जो कैंडल्स हैं इनको फूंक मार के बुझा दो और आपकी जो इच्छा आपको मांगनी है मांग लो आप। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने अपनी आंखें बंद की, फूंक मारी और फिर थोड़ी देर बाद आंख खोली। तो गोविंद देवीदास जी ने पूछा कि प्रभुपाद आपने क्या मांगा, आपने क्या मांगा। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा मेरी सारी इच्छाएं कृष्ण के लिए हैं। तो कृष्ण के नाम का प्रचार हो, कृष्ण की भक्ति का प्रचार हो, बस और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ कृष्ण के लिए चाहिए। तो यहां पर जैसे बताया जा रहा है वृत्रासुर के बारे में कि वृत्रासुर वैसे तो पूरे जो पृथ्वी है, पूरी जो पूरा ब्रह्मांड है उसको निगल जाने में समर्थ है, लेकिन वो देवताओं के द्वारा, देवता कौन लोग हैं, जीव हैं जो कि संसार के बंधन में फंसे हुए हैं, उनके द्वारा मारे जाने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की तुष्टि है, भगवान की संतुष्टि है इसके अंदर। तो भक्तों की सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि भगवान किस प्रकार से संतुष्ट हो। अब ऐसे छोटा हरिदास ठाकुर का अगर हम जो सारा कथन देखें, जो छोटा हरिदास ठाकुर के साथ कितना बुरा हुआ, इन द सेंस कि महाप्रभु ने उन्हें क्षमा ही नहीं किया, जबकि उन्होंने किया गया था सिर्फ एक बात कर ली थी स्त्री से, ये और वो भी भगवान के लिए चावल लेने के लिए, भगवान के लिए जो प्रसाद देने के लिए, तो इसके लिए जो है महाप्रभु ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, और इस तरह से रिजेक्ट कर दिया कि अंततः उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। और महाप्रभु ने कहा अच्छा किया उन्होंने आत्महत्या कर ली, और जब उन्होंने आत्महत्या की तो उसके बाद वो अपने आध्यात्मिक रूप में आकर फिर से जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए गाया करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका जीवन पहले भी सेवा में लगा हुआ था, और इस लीला में के होने के बाद भी उनका जीवन फिर से सेवा में लगा हुआ था। तो ये श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसका जीवन पहले भी सेवा में लगा हुआ है, उसका जीवन बाद में भी सेवा में लगा हुआ है। इसलिए जो भक्ति है ये ही नित्य धर्म है जीव का, मुक्ति नहीं। क्योंकि मुक्ति में क्या है, मुक्ति तक पहुंच गया, अब उसके बाद मुक्ति के बाद क्या करना, फिर मुक्ति के बाद मुक्ति की क्रिया थोड़ी होती है कोई, मुक्ति हो गई बस हो गया एपिसोड खत्म। लेकिन भक्ति क्या है, इस संसार में भी चलती है और मुक्त होने के बाद भी चलती है। इसलिए भक्ति जो है वो हर एक जीव का नित्य धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नित्य धर्म नहीं है, ये तो रबर स्टैम्प धर्म है कि जिसने सिख परिवार में जन्म ले लिया वो सिख हो गया, जिसने मुसलमान घर में जन्म ले लिया वो मुसलमान हो गया, जिसने हिंदू घर में जन्म ले लिया वो हिंदू हो गया। तो ये तो सारे रबर स्टैम्प धर्म है। असली धर्म जो है वास्तव में जो जीव का धर्म है वो है भक्ति, क्योंकि ये धर्म उसका हमेशा हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इसलिए ये जो भक्ति कार्य है ये उसके लिए स्वाभाविक है। इसलिए बाकी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सिर्फ हृदय को शुष्क बनाती हैं और कुछ नहीं। जैसे एक बार एक मायावादी था, उसने कहा स्वामी जी हाउ कैन यू से दैट देयर इज नो ब्लिस इन भ्रमन, इस निराकार भ्रम के अंदर आनंद नहीं है, आप ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम तो भक्त हम भक्त होते हैं वो तो सकारवादी होते हैं, भगवान के रूप को मानते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप निराकारवाद का प्रचार नहीं करते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि निराकार के अंदर आनंद नहीं है, कैसे कह सकते हैं आप। प्रभुपाद जी ने कहा आनंद तो है निराकार ब्रह्म में, लेकिन रस नहीं है, वो नीरस है। तो अगर कोई निराकार ब्रह्म तक भी अगर पहुंच जाए तो भी वो जीवन जो है वहां पर उसका नीरस होगा, क्योंकि जो स्वाभाविक जो कार्य है जीव का वो भक्ति है। इसे प्रभुपाद जी ने कहा वहां पर आनंद तो है, देयर इज ब्लिस इन भ्रमण, बट देयर इज नो रस, रस नहीं है वहां पर। रस क्या है, जीव और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान होता है। और भक्ति में क्या है, शुरू एकदम शुरुआती समय से ही ये एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे वैसे भगवान जो है पूरी सृष्टि के संचालन करता है, लेकिन जब विग्रह रूप में आते हैं तो कहते देखो वैसे तो मैं संचालन करता हूं, आई एम द कंट्रोलर, पर लेकिन अब मैं तुम्हारे द्वारा कंट्रोल होने वाला हूं। भगवान विग्रह रूप में क्या करें, अपने आप का ये दिखा रहे कि देखो मैं तुम्हारे पर निर्भर हूं, मुझे सुबह उठाना, मुझे कपड़े पहनाना, मुझको मेरा श्रृंगार करना, मेरे को भोजन कराना, मैं तो तुम्हारे ऊपर निर्भर हूं। तो यहां पर क्या है, ये भक्त का जो है स्नेह होता है। तो इस प्रकार से भक्त जो है उसकी आसक्ति बढ़ती है भगवान के साथ। एक बार एक शिष्य ने बोला प्रभुपाद मैं इतना ज्यादा टेंशन में रहता हूं ना, मेरी पुजारी सेवा है, सुबह सुबह 4:30 बजे दर्शन खुलने ही खुलने हैं, उसके लिए जो तैयारी करनी है सुबह उठ के, और भगवान को जो है भगवान का श्रृंगार करना, और 4:30 बजे डॉट मंदिर खुलना चाहिए मंगल आरती के लिए, मैं बहुत एंग्जाइटी में रहता हूं। प्रभुपाद जी ने कहा दिस एंग्जाइटी इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जो चिंता है ना इसी को कृष्ण भावना कहते हैं। क्योंकि तुम किसके लिए चिंता कर रहे हो, खुद के लिए नहीं, कृष्ण के लिए। और इस चिंता के अंदर भी है एक एक आनंद है। इसलिए अगर ऐसे व्यक्ति को बोला जाए ना, चलो प्रभु तुम्हारी सेवा चलो हटा देते हैं, तुम इतने दुखी हो इस सेवा में कि तुमको सुबह इतनी टेंशन होती है, दर्शन खोलने ये करना है वो, तुम्हारी ना सेवा हटा दे। नहीं 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 प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है थोड़ी टेंशन होती है, लेकिन रोजी सेवा करना भी तो जरूरी है ना। तो सेवा क्यों छोड़ता नहीं है? क्योंकि इस एंग्जाइटी में भी आनंद है। इस भौतिक जगत में क्या है? आनंद में भी क्या है? साथ में दुख छुपा हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है? इवन दुख के अंदर भी जो है आनंद है। तो भौतिक जगत में जो अंधकार, जो मतलब जो रोशनी है उसके साथ अंधकार चिपका हुआ है, और आध्यात्मिक जगत में जो अंधकार भी दिखता है उसमें भी रोशनी है। इन द मटेरियल वर्ल्ड इवन द ब्राइट साइड हैज अ डार्क साइड, बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इवन अपेरेंटली डार्क साइड ऑल्सो हैज ब्राइट साइड। जैसे भक्त जो संघर्ष भी करते हैं, हम जो भक्त होते हैं वो संघर्ष करते हैं। अब उस संघर्ष में भी क्या करते हैं, वास्तव में वो हर एक जो संघर्ष का जो कार्य है वो उसे कृष्ण के और पास लेके जा रहा है। इसे श्री प्रभुपाद ने बोला है एक शिष्य को, आई कैन मेक यू, आई कैन लिबरेट यू राइट हेयर राइट नाउ, बट आई विल नॉट डू दैट। डू यू नो वाई? मैं तुमको अभी के अभी यहीं पर मुक्त कर सकता हूं तुम्हें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? शिष्य ने कहा, श्री प्रभुपाद क्यों? तो प्रभुपाद ने कहा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस द स्वीट स्ट्रगल ऑफ कल्टिवेटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। कि जो ये जो संघर्ष है ना कृष्ण भावना का, ये संघर्ष उसमें भी एक मिठास है, क्योंकि हम संघर्ष करते हैं और अनर्थों से जो है जब धीरे धीरे करके मुक्त होते हैं, कृष्ण हमें अलग करते हैं अनर्थों से, तो वो संघर्ष भी जो है एक मिठास है। क्योंकि जितने भी अवरोध हम भक्ति में फेस करते हैं, चैतन्य भागवत में लिखा है, ये सारे के सारे अवरोध भगवान के दास है। कहते हैं कुछ भक्तों को कहता है, प्रभु जी मेरी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स हैं ना, मेरी भक्ति में इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या बताऊं मैं। लेकिन चैतन्य भागवत बता रही है कि ये सारे ऑब्स्टिकल्स भगवान के दास हैं। प्रभु जी कमाल है, भगवान को क्या मिलता है हमारी भक्ति में अड़चने डालने का? सिंपल फ्लो नहीं बनाया जाए, एकदम मक्खन जैसी हो जाए अगर भक्ति तो बढ़िया हो जाए सब कुछ। क्यों भगवान ने क्यों अपने दास जो है ये अवरोध के रूप में डाल दिए? क्योंकि इस संघर्ष में जब कृष्ण की ओर जब जाता है भक्त, तो उसकी क्या है, उसका प्रेम भगवान के साथ बड़ा घना हो जाता है। विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर कहते हैं कि जितने अवरोध आते हैं ना प्रेम के कार्य में, उतना ज्यादा क्या है वो जो प्रेम है घना हो जाता है। और ये लव स्टोरी बड़ी स्पाइसी हो जाती है, ये जीव और भगवान की जो लव स्टोरी है बड़ी स्पाइसी हो जाती है, एडवेंचरस हो जाती है। जैसे कोई मूवी हो उस अंदर क्या है, हीरो है हीरोइन है, हीरो बोले आई लव यू और हीरोइन बोले ओ आई लव यू टू, चलो शादी कर लेते हैं, और दोनों की शादी हो जाती है एंड दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर। 5 मिनट में मूवी खत्म, कौन जाएगा इस मूवी को देखने के लिए? कोई जाएगा? कहे अरे एकदम बेकार सड़ी मूवी है, बोला आई लव यू शादी हो गई दोनों हो गया बस घर बस गया दोनों का, ये भी कोई मूवी है? पर अगर उसके अंदर विलन हो मूवी के अंदर, जो कि हीरोइन को जो है हीरो से मिलने से रोकता है, हीरो भी संघर्ष कर रहा है हीरोइन भी संघर्ष कर रही है, तो कहें यार मूवी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं यार, बड़ा मजा आया, वो व्हाट अ मूवी मैन। तो भगवान और जीव के बीच की जो लव स्टोरी है इसको और स्पाइसी और एडवेंचरस और ज्यादा जो है इस प्रेम को और घना बना देते हैं भगवान इन अवरोधों को डाल के। तो जितने भी अवरोध भक्ति में आते हैं वो इसलिए नहीं कि हमारी भक्ति को रोकने के लिए, चल अब यहीं पर ठहर जा बस बहुत हो गई तेरी भक्ति, कितने साल के तूने, 5 साल के, बस हो गया तेरा अकाउंट खत्म, चल किताब बंद कर निकल। भगवान ये सारे अवरोध इससे डालते हैं कि बच्चे और मेहनत करने इधर को। जैसे जिम जाते हैं ना जो लोग, है ना, पहले करते हैं 2 किलो उठाया, अब 2 किलो क्या आराम से उठा लेते हैं, तो जिम इंस्ट्रक्टर कहता है अब 5 किलो पे आ जाओ बच्चे, फिर क्या कहा 5 किलो पे ज्यादा जोर लगता है। जब 5 किलो भी उठाना शुरू कर दिया उसके बाद जिम इंस्ट्रक्टर कहता है अब आ जाओ 7.5 किलो पे आ जाओ, 8 किलो पे आ जाओ, अब और जोर लगेगा। पर इस सारी एक्सरसाइज में क्या उसके मसल्स बन रहे हैं। तो इसी प्रकार से भगवान भी जीव के स्पिरिचुअल मसल्स बनाने के लिए ये सारी एक्सरसाइज करते हैं, ताकि अब ये जो है जब अवरोधों से लड़ेगा और कृष्ण के प्रति और समर्पित होगा और समर्पित होगा और समर्पित होगा, ये जो समर्पण की क्रिया है ना, ये इसमें भी एक मिठास है, इसमें एक मिठास है प्रभुपाद जी का। ऑफकोर्स जब हम करते हैं तो दुख लगता है, जैसे कैंसर हो, कैंसर का ऑपरेशन हो, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब हो जाएगा ना तो बड़ा शीतलता महसूस होती है, अरे यहां पर वो है नहीं अब, निकल गया वो, तो जीव को जो है बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो भगवान क्या करते हैं, या तो ऑब्स्टिकल्स को हटा देंगे भगवान से कोई प्रार्थना करे भक्त, या फिर ऑब्स्टिकल्स को ना ऐसे ओरिएंट कर देंगे कि ना जब उससे रगड़ता हुआ जाएगा ना भक्त, تو جو انوانٹیڈ چیزیں نا وہ اکھڑتی چلی جائیں گی. ہو سکتا ہے اس کو اپیش ملے اس اکھڑنے میں کہ بھکت کا نام خراب ہو گیا, دیکھو اس بھکت نے ایسا کام کیا. بھکت ہوتے ہیں, بھکت ہو کے بھی ایسا کام کرتے ہیں بتاؤ. لیکن یہ کرشن اور بھکت کی آپس میں ڈیلنگ ہے کہ بھگوان نے اس کا کیا آپریشن کیسے کیا ہے اس کی شدھی کے لیے. ہو سکتا ہے اس کا ایک کسی وستو سے یا کسی ویکتی سے آکرشن ہو اور اس چکر میں وہ ایسا کاریہ کرے جس وجہ سے ایسا اپیش اس کو ملے تو اسے کہ میں کبھی سوچوں گا بھی نہیں اس وستو کے بارے میں, اس ویکتی کے بارے میں کبھی نہیں. کیا میں کس سے آسکت ہو گیا تھا, میں کرشن سے آسکت ہونا چاہیے تھا میرے کو. تو اس سے کیا ہے, وہ کرشن کی اور تیزی سے بڑھے گا وہ. تو جو کرشن کی کرپا ہے وہ دونوں روپوں میں آتی ہے. ایک تو ہے کہ بھگوان پورا جو مارگ ہے اس کو اور مکھنی بنا دیں اور اس کو جو ہے ایک دم فلوئنٹ بنا دیں بنا کسی آبسٹرکشن کے. اور کبھی کبھی بھگوان جو ہے اس کو صحیح رستہ دینے کے لیے, اس کو اور پش دینے کے لیے اس کا جو ہے یہ آپریشن کرتے ہیں. اس لیے کبھی بھی جو ہے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی بھکت کا, کیونکہ بھگوان اور اس کے بھکت کے بیچ میں کیا ڈیلنگ چل رہی ہے, یہ کس پرکار سے وہ بھگوان کے پاس جانے والا ہے. یہ مار یہ جو آپریشن ہے یہ بھگوان نے ڈیسائڈ کیا ہوا ہے. آپریشن کرشن داس, آپریشن رادھیکا دیوی داسی, یہ سارے آپریشن ہیں بھگوان کے. تو کبھی بھی جو ہے کسی بھکت کا اسی لیے مذاق نہیں اڑانا چاہیے, نندا نہیں کرنی چاہیے, ارے کیا پربھو کیسے نکلے تم, ہے گر گئے, بڑے گرے ہوئے بھکت ہو تم. جو ایسے بولے گا وہ اپنے گرنے کی تیاری کر رہا ہے. اور ایسا ویکتی جو کہ دوسرے سے ایرشا کرتا ہے اور دوسرے کی نندا کرتا ہے تو کرشن بھی جو ہے جیو کی سائڈ چھوڑ دیتے ہیں, وہ مایا کی سائڈ مل جاتے ہیں. اب سوچو ایک طرف ہے بال کا دس ہزارواں حصہ جیو اور دوسری طرف ہو مایا اور ساتھ میں کرشن, سوچو کیا حال ہوگا یہ جو جیو ہے یہاں پہ. اگر ان کے بیچ میں ٹگ آف وار ہو جائے کہ بھائی رسا کشی ہونے والی ہے, ٹیم اے ہے ایک جیو جس کا کی سائز ہے بال کا ایک دس ہزارواں حصہ اور دوسری طرف ہے کرشن اور مایا, تو آئیے دیکھیں اس میچ میں کیا ہوتا ہے, کیا میچ میں حال ہوگا. سچا مس میچ ہے نا. لیکن کرشن مایا کی طرف چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں اس کو گرا دے, کیونکہ دوسرے کے گرنے پہ نا بڑا خوش ہوتا ہے, اس کو گرا دو. اور مایا جب گرے گی نا تو ہتاش ہو کے گرے گا. اس لیے نندا یا ایرشا جو ہم کرتے ہیں یہ واسطہ میں بہت بہت گھنونی چیز ہے. اور تو بھکت ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایرشا نہیں کرتا, لیکن کیونکہ ہم میں ایرشا بھری ہوئی ہے اسی لیے جو ہے ہم کسی نہ کسی سے ایرشا کرتے ہیں. اور ایرشا واسطہ میں ہم کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ میں ایک ہال مارک ہے کہ ہم کرشن سے ایرشا کرتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے ارے نہیں پربھو جی, رادھیکا رمن جی تو اتنے بڑھیا ہیں, ان سے تھوڑی ایرشا کریں گے, وہ تو او بھگوان ہم ان سے کیا ایرشا کریں گے. میری ایرشا تو اس بھکت کے ساتھ ہے, نکما کہیں کا, ارے وہ ایسا ہے, ارے وہ تو ویسا ہے. لیکن ہم جانتے ہو اس بھکت سے کیوں ایرشا کر رہے ہیں, کیونکہ نا ابھی کوالٹیز میں ہم کہیں اس کے 19-20 ہیں. لیکن کوالٹیز میں اگر ہم 19-20 کے بجائے اگر کچھ 49-100 ہو جائے نا اگر, تو ہم بھگوان سے ایرشا کرنا شروع کریں گے. جیسے کہ پونڈر کرتا تھا, پونڈر کو اس سنسار میں کسی سے ایرشا نہیں تھی, کیونکہ اس کے اندر اتنے سارے گن تھے, اتنا گنی تھا وہ کہ سنسار میں کسی سے ایرشا کرے, ارے کیا بچے ہیں تم لوگ, کیا ایرشا کروں تمہارے ساتھ. تو گنوں میں وہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس لیے وہ کرشن سے ایرشا کرتا تھا کہ واسودیو تم نکلی واسودیو, میں پونڈرک اصلی واسودیو. کیوں؟ کیونکہ اس اندر گن اتنے ہیں. تو ہم لوگوں کے ہوتا ابھی اتنے گن ہیں نہیں, اسی لیے جو ہے ہم کرشن سے ایرشا کرنے کی ہماری اوقات ہی نہیں ہے. اس لیے کیا ایرشا کریں گے کرشن سے, تو ہم آپس میں ادھر ادھر ایرشا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کسی سے بھی ایرشا کرنا یہ ہی گارنٹی ہے کہ ہماری کرشن سے ایرشا. اس لیے ہم بھگوان کی اس تٹستھ شکتی سے ہم ایرشا کر رہے ہیں. بھگوان کی تٹس شکتی سے اگر ایرشا کر رہے ہیں تو فیکچری ہم کرشن سے ایرشا کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بھگوان کے ہی ایک انش سے ایرشا کر رہے ہیں. تو پربھوپاد جی کیا بول رہے ہیں کہ جو بھکت ہوتا ہے وہ ایرشا سے مکت ہوتا ہے, لیکن جو پرووکنگ سچویشن آتی ہیں تو ہمارے اندر کی جو ایرشالو سبھاؤ ہے وہ آگے آ جاتا ہے. یہ ہمارے ایریا میں کیسے پریچنگ کر رہا ہے, وہ ہے کون, آیا بڑا ہمارے سے بڑا پرچارک ہے وہ, اس سے کہو ہمارے ایریا چھوڑ دے. بک ڈسٹریبیوشن ہم آگے جائیں گے, فنڈ ریزنگ میں آگے رہوں گا, ارے وہ کیا فنڈ ریزنگ کرتا ہے, میں اصلی فنڈ ریزنگ کرتا ہوں, میں چلا رہا ہوں مندر, یہ اگر میں فنڈ ریزنگ نہ کروں نا مندر نہ چلنے والا. ایرشا, ارے وہ کیا پروچن دیتا ہے, اس کو آتا کچھ, شاستر پڑھے اس نے, نلائک آدمی, بولنا تھا تو آتا نہیں اسے. ایرشا, ارے کیا گاتا ہے وہ, ارے گلا صاف کرتا ہے بھگوان سامنے بیٹھ کے, ڈی ڈی سے اسے گانا آتا ہے, وہ کیرتن کرتا ہے وہ آج. تو یہ سب کیا ہے, واسطہ میں ایرشا ہے. और होता क्या है, फिर ऐसा भक्त अपने आप को जस्टिफाई भी करता है, प्रभु जी ये तो हेल्दी क्रिटिसिज्म है, हम तो उसके भले के लिए बोल रहे हैं। भगवान सब जानते हैं कितने कितने भले और कितने भाले हैं अंदर, सब जानते हैं भगवान। तो ये जो है ये ईर्ष्या, ये बहुत खतरनाक है। और ये ईर्ष्या ही है जो कि वास्तव में संकीर्तन आंदोलन, ये जो मिशन है ना, ये हम लोग वी आर ऑल मिशनरीज है ना, ये हरे कृष्ण आंदोलन है, तो ये मिशनरी स्पिरिट के भी खिलाफ है, उसके रास्ते में अवरोधक है, क्योंकि मिशनरी स्पिरिट होता है मतलब इस हरे कृष्ण आंदोलन को फैलाना है हमें। लेकिन जब ईर्ष्या होती है ना, तो सारी जो शक्ति है ना वो एक दूसरे से के गलतियां निकालने में, एक दूसरे के दोष निकालने में निकल जाती है, प्रचार करने के लिए हिम्मत ही नहीं रहती। तो इसीलिए ये जो ईर्ष्या है ये हमारी खुद की भक्ति में भी सबसे बड़ा अवरोधक है, बहुत बड़ा अवरोधक है ये। इवन मायावादी लोग जो है इस संसार में इसे अटके हुए क्योंकि वो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। एक भक्त का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, एक मायावादी से मिला, वो उन्होंने कहा, तो उसने देखा भाई काले रंग के इसने जो है गाउन पहना हुआ है, सर पे जो है इसने मैटेड हेयर थे, उसके सामने त्रिशूल था उसके, कह रहे हैं ये लो हम गीता दे रहे हैं, ये इस महीने दिसंबर के महीने में ना हम लोग गीता देते हैं, तो ये लो गीता ले लो। कह रहे ना ना मैं नहीं लूंगा, जर्मनी से था वो, तो कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। कह रहे अरे क्यों, क्या हो गया? कह रहे नहीं नहीं बहुत महंगी है। मैंने कहा अरे 100 रुपए की तो है, तो क्या हो गया, ले लो ले लो। कह रहे ना मेरे पास 100 रुपए नहीं है। तो भक्ने कहा चलो ठीक है भाई, तुमको 50 रुपए मैं स्पॉन्सर करता हूँ तुम्हारे, तुम 50 रुपए में ले लो। कहते नहीं 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 50 रुपए भी नहीं लूंगा। भक्ने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई, फ्री में ले लो, बस सारे पैसे मैं स्पॉन्सर करता हूँ, तुम ये गीता फ्री में ले लो। कहते नहीं 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 फ्री में भी नहीं चाहिए। भक्त हैरान हो गया, कमाल है, फ्री में दे रहा हूँ तू भी नहीं ले रहा। तो भक्त ने कहा क्यों भाई, फ्री में भी नहीं चाहिए तुमको, फ्री में तो ले लो। कहते नहीं नहीं मेरे को ये गीता नहीं पढ़नी है, भगवदगीता यथारूप तुम्हारी जो है ना ये पढ़नी नहीं मेरे को। क्यों क्यों क्या हो गया? कहते अरे सारा इसमें कृष्ण कृष्ण भरा हुआ है, कृष्ण 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 सारा कृष्ण कृष्ण भरा हुआ है इसमें, मुझे पसंद नहीं, मुझे। तो ये क्या है, ये ईर्ष्या है वास्तव में। और उसने वैसे संसार त्यागा हुआ है लेकिन वो ईर्ष्या को त्याग नहीं पा रहा, वो जर्मनी से था वो, उसने गाउन पहना हुआ है, उसने मैटेड हेयर थे, उसने त्रिशूल लिया हुआ है, और वो जो है तपस्या पालन कर रहा है, और एक महीने जो है मौन व्रत रखेगा, तपस्या कर रहा है वो। तो इंद्रिय भोग को छोड़ना भी यहां तक ही आसान है, लेकिन इस ईर्ष्या को छोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई जहरीला सांप है ना, तो उसको मंत्र के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है, कि भाई मंत्र बोला और उसका जो है जहर नलीफाई किया जा सकता है। लेकिन जिसका हृदय ईर्ष्या के जहर से भरा हुआ है, उसका कोई इलाज नहीं है, उस व्यक्ति से तो बस दूर रहना चाहिए। तो भक्त क्या होते हैं? भक्त तो इस ईर्ष्यालु स्वभाव से मुक्त होते हैं। लेकिन बहुत ही जगह पे आप जाएंगे ना, सब के सब इस जो है हमेशा सांप की तरह तैयार बैठे हैं कि कब मैं किसी को डसूं। इसलिए बहुत ही जगह जो है ये एक कूड़ादान है, ये जो है ये वास्तव में एक बहुत बड़ा सांप का बिल है, जिसके अंदर बहुत सारे सांप रहते हैं और वे एक दूसरे को जो है काटते रहते हैं बहुत ही जगह। इसे जब मंदिर आते हैं ना, बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि भक्त क्या है, यहां पर ईर्ष्या से रहते हैं, तो यहां बड़ा अच्छा लगता है, भगवान के सुंदर दर्शन होते हैं, भक्त लोग सुंदर हैं, उनका स्वभाव अच्छा है, बातचीत अच्छी है, अच्छी बात कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। क्योंकि सांप के बिल जो है सारा संसार वास्तव में पूरा एक सांप का बिल ही है, क्योंकि सब के सब यहां तो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और अंततगत्वा भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो जब तक कृष्ण से ईर्ष्या करेंगे या फिर किसी भी जीव से ईर्ष्या करेंगे, तो तब तक इस संसार में हम बंधे रहेंगे। क्योंकि ईर्ष्या जो है ये स्नेह और जो करुणा है ना, उसके रास्ते में अवरोधक है ये। इसलिए ठीक है, समय हो गया, मैं यहीं पे विराम दूंगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है? यस
एनवी हमारे अंदर होती है, तो समझ, और अगर हम चाहते हैं कि वो एनवी बाहर निकले, वो खत्म हो जाए, पर वो हमारे और भक्तों के संबंधों के बीच में आती है, और हम भक्त और भगवान के भी सही रूप में शरण नहीं ले पाते, तो फिर दोनों कैसे किए जा सकते?
एनवी जो है वो इसलिए आती है क्योंकि ना स्वामित्व का भाव है, तो स्वामित्व का भाव का उल्टा क्या है? सेवा। तो जितनी हम वैष्णव सेवा करेंगे ना, उतना ये ईर्ष्या निकलेगी हमारे हृदय से। तो जो डिटॉक्सिफाई अगर करना है हमें अपने हृदय को, तो हमें वैष्णव सेवा करनी चाहिए। दास दास दासानुदास, जितने हम बॉस बॉसानु बॉस बनेंगे ना, उतने ज्यादा हम ईर्षा के गड्ढे में गिरते जाएंगे। हमें बॉस बॉसानु बॉस बनना नहीं है, हमें दास दासानु दास बनना है। तो जितने दास दासानु दास बनेंगे उतने ज्यादा हम इस ईर्षा से मुक्त होते जाएंगे। तो हमें जो है वैष्णव सेवा करनी चाहिए, और जिस व्यक्ति से हम ईर्षा करते हैं ना, हमें उसके लिए उपहार लेके जाना चाहिए, उसके लिए प्रसाद लेके जाना चाहिए। प्रभु जी मेरे लिए कुछ सेवा है क्या बताइए ना, माता जी मेरे लिए कुछ सेवा बताइए ना। तो जो ईर्षा है वो इसी तरह से जाती है सेवा करके। और ऑफकोर्स हरे कृष्ण महामंत्र तो वो, तो वो मेडिसिन तो सभी अवरोधों के लिए है ही है, वो तो रॉक बॉटम है हरि नाम लेना। लेकिन साथ में क्या है, वैष्णव सेवा करें, उससे ईर्षा जाती है। और किसी को सवाल?
सेवा कर रहे हैं, सेवा कर सकूं वो यहाँ पे अगर हम लोग ये प्रश्न में आता कि हेल्दी कॉम्पिटिशन है कि एनवीनेस है, तो कैसे समझ में आया था?
तो सबको सुनाई दिया इन्होंने क्या बोला? नहीं सुनाई दिया? ओके। इन्होंने पूछा कि भाई हेल्दी कॉम्पिटिशन का हम कैसे पहचाने। ये पहले तो उन्होंने पूछा कि एनवी और जेलसी एक ही है क्या? मैंने कहा हाँ एक ही है। उसके बाद बोल रहे उन्होंने भक्त ने कहा कि आध्यात्मिक जगत में जो है वहां पर भी एनवी देखी जाती है, इस तरह से कभी कभी होती है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि वहां पर हेल्दी कॉम्पिटिशन है, वहां पर एनवी नहीं है? जो हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है ना, तो भक्तों में आपस में संबंध खराब नहीं होता कभी भी। ना तो कृष्ण के साथ संबंध हमारा खराब होगा, ना भक्तों के साथ संबंध खराब होगा, अगर हेल्दी कॉम्पिटिशन है तो। लेकिन जब एनवी होती है ना, तो रिलेशनशिप खराब हो जाता है। जब एनवी होती है ना, तो ग्रज आता है हृदय में। ग्रज, ग्रज पता नहीं क्या होता है, हृदय में अंगारे रखना किसी के लिए, कि इस अंगार इस इतने इतना झुलसाऊं मैं इन अंगारों की, इससे जो धुआं निकलेगा ना, इससे डिस्टर्ब करूंगा इसको मैं। लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानता, ये जो ग्रज जो रख रहा है, जिसके धुएं से डिस्टर्ब करना चाह रहा है दूसरे व्यक्ति को, वो खुद जल रहा है इसके अंदर। जब हम किसी के लिए ग्रज रखते हैं ना, सबसे पहले तो हम उस ग्रज में सबसे पहले तो खुद जलते हैं, झुलसते हैं उसके अंदर, और सोचते हैं इससे ना इसको भी मैं तंग करूंगा, इसको ये धुआं निकलेगा ना, इससे तेरे को तंग हुआ मैं। लेकिन धुएं से वो तंग तो बाद में हुआ, पहले तो मैं खुद झुलस रहा हूं मैं। तो ग्रज रखना बिल्कुल वैसा ही है। यहां पर सोचा हमने ना, पीठ से तलवार निकाल लेता हूं, यहां से निकल आएगी ना, ये इसको घोप दूंगा। तो पहले तो उसने अपना सत्यानाश मान लिया उसने, है ना। तो हम जब ग्रज रखते हैं ना, तो वैसे ही होता है कि तलवार पीछे से निकाल के नहीं ना, यहां पेट से निकाल लो, और फिर सोचो कि इसके पेट में डाल देता हूं इसको। पहले तो खुद ही अपना बेड़ा कर मान लिया उसने, है ना। तो जब हम ग्रज रखते हैं, किसी के प्रति ईर्षा रखते हैं, उसका तो कुछ होना नहीं होना, लेकिन हम जो इस ईर्षा की अग्नि के अंदर जल रहे हैं ना, तप रहे हैं, हम खुद राख हो जाएंगे, और ऐसी राख होंगे कि अपवित्र होंगे। राख तो पवित्र होती है, हम और अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए जो ये रिलेशनशिप्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भक्ति मतलब रिलेशनशिप। हरि नाम के साथ रिलेशन, डीटीज के साथ रिलेशन, भक्तों के साथ रिलेशन, गुरु के साथ रिलेशन, शास्त्र के साथ रिलेशन, रिलेशन 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 रिलेशन। भक्ति मतलब रिलेशनशिप्स। आज रिलेशनशिप ही गया तो बचा क्या? मायावादी हो गए फिर तो, निराकारवादी हो गए, निर्विशेषवादी हो गए। भक्ति मतलब रिलेशनशिप्स, संबंध। संबंध गए तो सब गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए बहुत ही जगह में आप देखेंगे लोग चीजों से प्रेम करते हैं, इंसान से नहीं करते, क्योंकि संबंध है नहीं। भौतिक संसार भी क्या है, निराकारित है एक तरह से, इसे सब चीजों से प्यार करते हैं, इंसान से कोई प्यार नहीं करता। पति अपनी पत्नी को क्या देखता है, एक पैशन की मशीन तो देखता है, ताकि जिसपे अपना पैशन उगल सके। और पत्नी अपने पति को क्या देखती है, एटीएम कार्ड देखती है वो, इससे पैसा मिलता रहा है, मैं भी अपनी साड़ियां पहनती रहूं, बनारसी साड़ियां पहनती रहूं, लिपस्टिक लगाती रहूं, नेल पॉलिश लगाती रहूं, बस। तो दोनों वास्तव में चीजों से प्रेम करते, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। तो बहुत ही संसार ही है। तो यहां पर ये सारा जो है निराकार ही है बहुत ही जगत, इसलिए यहां कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। रिलेशनशिप है तो इसलिए ताकि हमारी चीजें मिलती रहे हमको, हमारे शरीर को संवारने के लिए, ताकि हम हमारे लिए तालियां बजती रहें, हमको मेडल्स मिलते रहें, बस। तो बहुत ही जगत तो यही है, तो रिलेशनशिप्स। इसलिए हमें हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए, रिलेशनशिप्स को भी खराब ना हो। और किसी को प्रश्न है? ऐसे नहीं, मैं किसी को देख नहीं पा रहा जिन्हें ऐसे हाथ खड़ा किया हो। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भागवतम की जय, दाय गौ प्रेमानंदे हरि हरि वो समाज का तुल भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।